بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुठलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज बुधवार है, बहमन की 27, रजब की 14 और फरवरी की 16 तारीख। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप पैगम्बर इस्लाम की प्राण प्रिय नवासी हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैह के वफात के दुखद अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, और सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति कल कतर जा रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर जानलेवा हमला किया गया। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि रूस और चीन की अपेक्षा ईरान बड़ी चुनौती है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। कतर में मौजूद ईरानी राजदूत ने बताया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अगले सप्ताह दोहा पहुंच रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार समाचार पत्र अल कुत्सुल अरबी ने कतर के राजनयिक सूत्रों के हवाले से यह सूचना दी थी कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी गुरुवार 17 फरवरी को क्षेत्रीय मुद्दों और परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कतर की यात्रा पर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच दोहा में मौजूद ईरान के राजदूत ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति रईसी की कतर यात्रा अगले सप्ताह होने वाली है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार दोहा में तैनात ईरान के राजदूत हमीद रजा देहकानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अकाउंट के जरिए ये सूचना दी है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की आधिकारिक कतर यात्रा अगले सप्ताह होने वाली है। ईरान के राजदूत हमीद रजा देहकानी ने बताया है कि राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ कतर पहुंचने वाला उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अपनी इस यात्रा में द्विपक्षीय बैठकों के अलावा गैस निर्यातक देशों के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेगा। उल्लेखनीय है कि आजकल कतर के अधिकारी कुछ दिनों में दोहा में आयोजित होने वाले गैस निर्यातक देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्च परिषद के सचिव का कहना है कि वचन देने के बाद उसको पूरा न करने की अमेरिकी नीति ही हर समझौते के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी अमेरिका और वचन पूरा न करने वाले यूरोपियों के होते हुए किसी समझौते का होना संभव नहीं है। अपने ट्वीट में अली शमखानी ने लिखा है कि पूरे तरीके से प्रतिबंधों के हटने की स्थिति में ईरान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के हटाने की पुष्टि ही किसी समझौते का अनिवार्य भाग है। अली शमखानी ने इससे पहले एक ट्वीट में लिखा था कि अमेरिका की वर्तमान सरकार ईरान के विरुद्ध ट्रंप की अधिकतम दबाव वाली नीति को आगे बढ़ाते हुए उन लक्ष्यों को झूठे वचनों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है जिनको वो जोर जबरदस्ती के माध्यम से हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने लिखा है कि जब तक अमेरिका काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं आएगा उस समय तक वियना वार्ता में प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। ईरान की थल सेना के कमांडर ने अपने एक बयान में कहा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को पराजित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज किसी भी दुश्मन में इतना साहस नहीं है कि वो ईरान की ओर बुरी नजर उठाकर देख सके। ईरान की थल सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ईरानी सेना का प्रमुख कर्तव्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सेना के जवानों की तैनाती का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस्लामी गणतंत्र ईरान को किसी बात का खतरा है, बल्कि सीमा पर मौजूद जवानों की तैनाती इस बात को दर्शाती है कि हमारी सेना ने दुश्मनों के मुकाबले में अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को व्यवहारिक बना दिया है। ईरान की थल सेना के कमांडर ने इस बात को बल देकर कहा कि आज हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा हो चुका है और यही कारण है कि वो ईरान की ओर बुरी नजर उठाकर देखने का साहस नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना को ये गर्व प्राप्त है कि वो अपनी क्षमता व शक्ति पर भरोसा करके देश की पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए हुए है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। दक्षिणी कोरिया में ब्लॉक किए गए ईरानी पैसों के बारे में ईरानी अधिकारियों के साथ वार्ता आरंभ हो चुकी है। दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान के सीज हुए पैसों को वापस दिलाने के उद्देश्य से सियोल में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हो रही है। ईरान के कई बड़े छात्र संगठनों ने हिजाब को लेकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही भारतीय छात्राओं के समर्थन का ऐलान किया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ईरान के छात्र और छात्राओं के कई बड़े संगठनों ने संयुक्त तौर पर एक बयान जारी करके कहा है कि हालिया दिनों में ईरानी राष्ट्र ऐसी स्थिति में इस्लामी क्रांति की सफलता की सालगिरह और शैतानी चंगुल से आज़ादी की प्राप्ति का जश्न मना रहा जब भारत में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राएं अपने मूल अधिकारों के लिए हर दिन संघर्ष कर रही हैं। इस बयान में आया है कि इस संघर्ष में स्वतंत्रता, दृढ़ता, मूल्यों का पालन, साहस और ईश्वर पर विश्वास महसूस किया जा सकता है। गौरतलब है कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक केंद्रों में हिजाब के साथ महिला छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ न केवल भारत बल्कि इस समय दुनिया के बहुत से देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे देश जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं। फैसल मिकदाद ने दमिश्क में की जाने वाली आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि वे लोग और जो देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं उन सभी को बुरे दिनों की प्रतीक्षा में रहना चाहिए। मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक मिनी बस में हुए विस्फोट के परिणाम स्वरूप सीरिया का एक सैनिक मारा गया जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर जानलेवा हमला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों ने सऊदी अरब के युवराज पर जानलेवा हमले की बात कही है जिसमें वे बाल बाल बच गए। सूत्रों का कहना है कि यह हमला राजधानी रियाज में एक महल में किया गया। बताया जा रहा है कि जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस का काफिला महल से निकल रहा था, उसी समय महल के एक सुरक्षाकर्मी की ओर से यह हमला किया गया। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की यात्रा पर जाने वाले एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि रूस और चीन की अपेक्षा ईरान बड़ी चुनौती है। अमेरिकी सीनेटर ने बैतुल मुकद्दस में दावा किया कि रूस को यूक्रेन पर और चीन को ताइवान पर हमला करने से रोका जाना चाहिए, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण ईरान को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन की चुनौतियां इतिहास में महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में याद की जाएंगी, परंतु जो चुनौती उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और उसके बारे में काफी बात नहीं की जाती है, वो ईरान द्वारा परमाणु हथियारों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। अमेरिकी सीनेटर का यह दावा ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जब पश्चिम एशिया में मात्र इसराइल है जिसके पास 200 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स हैं और वो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तो श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे वियना वार्ता में ईरान के मजबूत होते पक्ष के बारे में,
ईरान विरोधी प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य,
और फिर बात करेंगे रूस यूक्रेन संकट के बीच राष्ट्र संघ से आई अपील के बारे में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि वर्तमान समय में तनाव बढ़ाने वाली बातें न की जाए।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां हिजाब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वियना वार्ता में ईरान का लगातार पलड़ा भारी होता जा रहा है, साथ ही अब ये वार्ता अपने संवेदनशील चरण में पहुंच गई है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
ईरान विरोधी प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से वियना वार्ता का 8वां चरण जारी है और ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी और ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात की। वार्ता के इस चरण में ईरान की पहल से यह पता चलता है कि ईरान अच्छे समझौते तक पहुंचने के लिए सच्चे और स्पष्ट मन से वार्ता की मेज पर आया है। परमाणु वार्ता के 8वें चरण में ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार और उप विदेश मंत्री अली बागरी कनी ने कोबर्गो होटल में दूसरे पक्षों की वार्ताकार टीमों के प्रमुखों से मुलाकात की, जबकि मंगलवार की शाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से भी भेंट वार्ता की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल से मुलाकात में ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार के गंभीर प्रयासों और वार्ता में उनके द्वारा पेश की गई यथार्थवादी पहलों की ओर इशारा करते हुए बल दिया कि आवश्यकता इस बात की है कि ईरान की वैध मांगों, उसके अधिकारों और हर प्रकार के सुझावों का ख्याल रखा जाए। वियना में ईरान की वार्ताकार टीम में शामिल लोगों से पता चलता है कि तेहरान अच्छे और मजबूत समझौते तक पहुंचने पर गंभीर है। ईरान ने परमाणु वार्ता के 8वें चरण में सफलता हासिल करने के लिए हर तरह की गारंटी दी है और अब इस बात के दृष्टिगत के यूरोपीय संघ के नीति प्रमुख के अनुसार वार्ता संवेदनशील और अंतिम चरण में पहुंच गई है, गेंद यूरोप के पाले में है। इस बात के दृष्टिगत कि ईरान वार्ता के आरंभ से ही एक अच्छे और स्थायी समझौते की प्राप्ति के प्रयास में रहा है और यही वजह है कि वो राष्ट्रीय हितों और अपनी वैध मांगों से हटकर कोई भी मांग पेश नहीं कर रहा है और ईरान की इस नीति की वजह परमाणु वार्ता से अमरीका का निकलना और उसका उल्लंघन है। इसीलिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने बल दिया है कि वियना में हर समझौते को नुकसान पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का उल्लंघन है, जबकि सत्यापन और गारंटी भी अच्छे समझौते का एक अटल हिस्सा है।
और अब चर्चा करते हैं रूस और यूक्रेन संकट की। रूस और यूक्रेन के मध्य पैदा हुए संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे सभी पक्षों से मांग की है कि वे तनाव बढ़ाने वाली बातें करने से बचें। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि वर्तमान समय में तनाव बढ़ाने वाली बातें न की जाएं। यूक्रेन पर हमले से संबंधित बढ़ते दावों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी पक्षों से ये मांग की है कि वे तनाव बढ़ाने वाली बातों से बचें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता ने यह कहा है कि तनाव बढ़ाने वाली बातों से बचना चाहिए क्योंकि इससे माहौल अधिक खराब होगा। उन्होंने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि यूक्रेन में हमारा काम पहले की ही तरह जारी है और वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी अपने दायित्व निभा रहे हैं। राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता का कहना है कि यूक्रेन की वर्तमान स्थिति या फिर ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें हालात बिगड़ने, झड़पों या युद्ध का खतरा हो, ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ाने वाली बातों से पूरी तरह से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी का ये बयान ऐसी स्थिति में आया है कि जब यूक्रेन के विषय को लेकर अमरीका और नेटो की ओर से लगातार बयानबाजियां जारी हैं। अपने पश्चिमी घटकों के साथ अमरीका पिछले कई सप्ताहों से यूक्रेन के बारे में बयानबाजी करता आ रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है, जो अब अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। अमरीका और उसके पश्चिमी घटकों का ये दावा है कि रूस यूक्रेन पर एक हमले की तैयारी कर रहा है। कुछ पश्चिमी संचार माध्यम तो हमले के दिन और तारीख के बारे में भी बातें करने लगे हैं। तनाव बढ़ाने वाले इन बातों के बीच रूस ने फिर कहा है कि मॉस्को का यूक्रेन पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। इस बात को वो पिछले कई महीनों से दोहराता चला आ रहा है। इसी बीच माहौल को गर्म बनाए रखने के उद्देश्य से अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अब भी यूक्रेन पर हमले की संभावना पाई जाती है, इसीलिए संयुक्त राज्य अमरीका हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यही कारण है कि मैंने यूक्रेन में रहने वाले अमरीकियों से मांग की है कि इससे पहले कि वहां के हालात खराब हो जाएं, वे लोग यूक्रेन को छोड़कर वापस चले आएं। अमरीका और उसके पश्चिमी घटकों का यह दावा है कि यूक्रेन की सीमा के निकट रूस का सैन्य जमावड़ा यूक्रेन पर संभावित हमले के अर्थ में है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम के इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने इसे पश्चिम की तनाव फैलाने वाली नीति का एक हिस्सा बताया जो माहौल को खराब कर सकती है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में अमरीका और पश्चिम का व्यवहार कुछ इस प्रकार का रहा है जिससे यूक्रेन वासी बहुत ही प्रभावित हुए हैं। अब उनके भीतर युद्ध को लेकर एक प्रकार का भय बैठ गया है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने मंगलवार को कहा है कि अमरीका ने यूक्रेन को लेकर जो शोर शराबा मचा रखा है उसका मुख्य उद्देश्य रूस को यूरोप के ऊर्जा बाजार से निकालकर स्वयं को वहां पर स्थापित करना है।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जबकि इस बीच हिजाब के मुद्दे ने इस देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और उडुपी सहित कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के एक कॉलेज में प्रशासन ने हिजाब पहनकर छात्राओं के क्लास में प्रवेश को रोका और छात्राओं से अपने हिजाब उतारने को कहा, लेकिन छात्राएं हिजाब पहनकर ही कक्षा में जाने पर अडिग रहीं। शिवामोगा के एक कॉलेज की 30 छात्राओं ने उस समय क्लासों का बहिर्गमन किया जब उनसे उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश अनुसार हिजाब उतारने को कहा गया। इन्हें पहले कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी। इन छात्राओं ने मुझे न्याय चाहिए के नारे लगाए और वहां मीडिया की उपस्थिति पर नाराजगी प्रकट की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवा राज बोम्मई ने हिजाब के संदर्भ में न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक शांति बनाए रखने और न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की अपील की और आशा जताई कि सभी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सौहार्द वातावरण बनाया जाना चाहिए। हिजाब का मुद्दा अब भारत में चर्चा का विषय बन गया है और इसके विरोध और समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। विरोधियों का कहना है कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक वस्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि समर्थकों का कहना है कि भारत का संविधान इस देश की महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र धारण करने की अनुमति देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में ये मुद्दा नहीं है और हम सबका सम्मान करते हैं।
सबके लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज देखिए हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है, लेकिन वही चीज है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब।
भाजपा और संघ परिवार जहां शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों का कहना है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान का ड्रेस कोड नहीं है तो कोई भी महिला अपनी इच्छा अनुसार ड्रेस पहन सकती है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा और संघ परिवार इस मुद्दे को उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति अपना रहा है ताकि चुनावों में राजनीतिक लाभ उठा सके। आम लोगों का कहना है कि भारत में सभी धर्मों के लोग बहुत पहले से मिलजुल कर रहते आए हैं और किसी के खाने और पहनने पर कभी रोक नहीं लगी है और इस देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राण प्रिय नवासी हजरत जैनब की शहादत के दुखद अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा के स्वर्गवास के दुखद अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा का जन्म 5 जमादिल अव्वल सन 6 हिजरी कमरी को पवित्र नगर मदीना में हुआ था। आपके पिता हजरत अली अलैहि सलाम और माता हजरत फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा हैं। पैगंबर इस्लाम आपके नाना हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहि सलाम आपके भाई हैं। हजरत जैनब का जब जन्म हुआ तो पैगंबर इस्लाम यात्रा पर थे और जब यात्रा से वापस आए तो उन्हें हजरत जैनब के जन्म की खबर मिली तो पैगंबर इस्लाम सीधे हजरत अली अलैहि सलाम के यहाँ गए और बच्ची को अपनी गोद में लिया, उसे चूमा और उसके बाद उसका नाम जैनब रखा। यानी जैनब उस महान हस्ती को कहते हैं जिसका नाम खुद पैगंबर इस्लाम ने रखा था। हजरत जैनब सलामुल्लाह का विवाह उनके चाचा हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला से हुआ था और उनके दो बेटे औन और मोहम्मद करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद में शहीद हो गए थे।
हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐतिहासिक वहां आंदोलन में हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने प्राणप्रिय भाई के साथ थीं। आशूरा की हृदय विदारक घटना के बाद हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा को यजीद के राक्षसी सैनिकों ने उन्हें भी बंदी बना लिया और वहां से उन्हें भी दूसरे बंदियों के साथ कूफा और शाम ले जाया गया। कूफा और शाम के बाजारों में हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सच्चाई और वास्तविकता को बयान करने के लिए जो खुतबे दिए हैं वे अपने आप में बेमिसाल हैं। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों को सुनकर बहुत से कूफियों और शामियों को हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनके खुतबे याद आ गए। हजरत जैनब के नाम का अर्थ बाप की जीनत व शोभा है और हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा की पावन जीवनी इस बात का जीवन प्रमाण है कि वो वास्तव में अपने महान पिता हजरत अली अलैहिस्सलाम की शोभा थीं। अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पिता हजरत अली अलैहिस्सलाम और माता हजरत फातिमा जहरा और भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत अधिक मुसीबतें उठाईं। इसलिए उनकी एक प्रसिद्ध उपाधि उम्मुल मसायब यानी मुसीबतों की माँ है। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा की दूसरी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जैसे अकीले बने हाशिम, आरिफा, फाजिला, आबिदा, आले मोहम्मद, नायबतुल हुसैन, शरीकतुल शहदा, शरीकतुल हुसैन, आलिम गैर मुअल्लमा। अगर हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो करबला में जो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके परिजनों और उनके वफादार साथियों के साथ हुआ था वो लोगों को पता न चल पाता। इसी तरह हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा अगर ना होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के संदेश को लोगों तक कौन पहुंचाता? हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला की महान घटना के बाद इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अहले हरम की रक्षा की, सबके टूटे हुए दिलों की सहारा और ढारस थीं। करबला में अपने दो बेटों औन और मोहम्मद को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके निकट प्रियजनों और उनके वफादार साथियों को यजीद की राक्षसी सेना ने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। यजीद की राक्षसी सेना ने उस महान हस्ती को शहीद कर दिया जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम की मशहूर हदीस है कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। यह वही हुसैन थे जो बचपने में पैगंबर इस्लाम की पीठ पर जब चढ़ गए थे और पैगंबर इस्लाम नमाज की हालत में थे तो महान ईश्वर के आदेश से पैगंबर इस्लाम ने उस वक्त सजदे से सिर नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन अली सलाम खुद से पैगंबर इस्लाम की पीठ से नहीं उतर गए। जगह जगह पर पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन को पहचानवाया पर यजीद की राक्षसी सेना ने पैगंबर इस्लाम के नवासे को बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया।
इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لینا چاہیے، پر یزید کی راکشسی سینا نے نہ کیول امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو پانی نہیں پلایا بلکہ پانی بند کر رکھا تھا اور نہر فرات پر کڑا پہرا بٹھا رکھا تھا۔ سارانش یہ کہ یزید کی راکشسی سینا اور تتھا کتھت مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پران پریے نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے پارتھیو شووں کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، ان کے پارتھیو شووں پر گھوڑے دوڑائے، خیموں میں آگ لگا دی، اہل حرم کو لوٹ لیا اور ایک ایک رسی میں کئی کئی لوگوں کو بندی بنا کر رکھا تھا، اور رونے پر بچوں کو کوڑے مارتے تھے، بندیوں کو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا اور پانی نہیں دیتے تھے۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو اسلام کافر کے ساتھ بھی کرنے کا آدیش نہیں دیتا۔ روچک بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو شہید کرنے والے سوئم کو مسلمان بھی سمجھتے تھے۔
کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پریجنوں کو بندی بنا کر شام میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی بندیوں میں شامل تھی۔ انہوں نے وہاں پر جو خطبہ دیا سب حیران رہ گئے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی ساری مصیبتیں پڑنے کے بعد حضرت زینب کا منوبل بہت گر گیا ہوگا، پرنتو انہوں نے جو خطبہ دیا اس سے یزید اور اس کے درباریوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت زینب نے جو خطبہ دیا، سب سے پہلے اس میں مہان ایشور کا گنگان کیا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجا، اور پوتر قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں مہان ایشور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ادھی گناہ کرنے کے لیے اتیاچاریوں کو مہلت دی ہے۔ اسی پرکار حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اہل حرم کو بازاروں میں ننگے سر گھمائے جانے پر یزید کی بھرسنا کی، اور اس کے اس کام کو جنگ بدر میں مارے گئے کافروں کا دویش و کینہ بتایا۔ حضرت زینب نے کہا کہ ہے میرے نانا کے آزاد کیے گئے بیٹے، یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور داسیوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کو بے پردہ ادھر ادھر گھمائے، ان کی چادریں چھین لی ہے اور انہیں بے پردہ کر دیا ہے۔ اسی پرکار حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے ہتھیاروں پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے نام کو مٹانے ہیتو یزید کا پریاس وفل رہے گا۔
دوستو، اتہاس کی وبھن کتابوں میں آیا ہے کہ وفات کے سمے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عمر 56 سال تھی۔ اتہاس کی ادھیکانش کتابوں کے انوسار 15 رجب 62 یا 63 ہجری قمری کو حضرت زینب کی وفات ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہمیشہ پوتر قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اور اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت پریم کرتی تھیں۔ کربلا میں جب حضرت زینب کی نظروں کے سامنے ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب نے آسمان کی اور دیکھا اور کہا، پالنے والے ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب عارفہ اور وہ مہاگیانی تھیں جو انگنت مصیبتوں کے بیچ کیول پریم کو دیکھتی تھیں اور کٹھن سے کٹھن شڑوں میں بھی کیول مہان ایشور پر بھروسہ کرتی تھیں اور اسی سے مدد مانگتی تھیں۔ حضرت زینب ہمیشہ مہان ایشور کو یاد کرتی اور اس کو بہترین مدد کرنے والا پاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ مہان ایشور کی رضا و پرسنتا کے لیے سمست مصیبتوں پر دھیر سے کام لیتی تھیں۔ حضرت زینب مہان ایشور کی بہت اپاسنا کرتی تھیں، اس پرکار سے کہ کربلا میں اور اس کے بعد جب انہیں بندی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا تب بھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زینب پر ایک اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور دوسری اور جیل میں کھانا اور پانی بھی بہت کم ملتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھوپھی، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے۔
امام حسین علیہ السلام معصوم تھے، وہ ایشوری دیا، رحمت و کرپا کے اس مادھیم و سروت تھے۔ پھر بھی جب کربلا میں اپنی پران پری بہن حضرت زینب سے انتیم بار بدا لینے کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ بہن زینب، نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت زینب مہان ایشور کی بندگی کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی نماز شب تب تک نہیں چھوٹتی تھی، اور عاشور کی مہان و امر گھٹنا کے بعد جب گیارہویں محرم کی رات آئی تب بھی حضرت زینب کی نماز شب نہیں چھوٹی، جبکہ یہ وہ پہلی رات تھی جب نہ تو امام حسین تھے اور نہ ہی حضرت عباس اور نہ ہی علی اکبر، سارا گھر لٹ چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سارے وفادار شہید ہو چکے تھے۔
یحییٰ مازنی نام کا ویکتی تھا جو کہتا ہے کہ کافی سمے تک میں مدینے میں حضرت علی علیہ السلام کی سیوا میں تھا اور میرا گھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے گھر کے پاس تھا۔ ایشور کی سوگند، میں نے کبھی بھی حضرت زینب کو نہیں دیکھا اور نہ ان کی آواز سنی۔ جب وہ اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھیں تو رات کو جاتی تھیں، جبکہ حضرت علی علیہ السلام ان کے آگے آگے اور امام حسن علیہ السلام ان کے داہنے اور امام حسین علیہ السلام ان کے بائیں ہوتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نکٹ پہنچتی تھیں تو حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھ جاتے تھے اور چراغ کو کم کر دیتے تھے۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام نے اپنے مہان پتا حضرت علی علیہ السلام سے اس کام کا کارن پوچھا تو امام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری بہن زینب کو کوئی دیکھ نہ لے۔
روایتوں میں ہے کہ حضرت زینب کٹھن سے کٹھن سمے اور پرستھتی میں بھی اپنے حجاب کا خیال رکھتی تھی۔ جب انہیں بندی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا جا رہا تھا تو دشمنوں نے ان کے سر سے چادر چھین لی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی تھی۔ تو دوستوں، آج کے کارکرم کی سماپتی سے پہلے ایک بار پھر کربلا کی مہانائکا اور سمست مانویہ سدگنوں کا نچوڑ و سار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کے دکھد افسر پر آپ سب کی سیوا میں ہاردک سمویدنا پرستوت کرتے ہیں۔ دوستوں، کارکرم آج کل کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں سواتی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کریں۔
کرانتیاں سامانیتہ وشو کے وبھن دیشوں میں بہت گہرے راجنیتک اور ساماجک پریورتنوں کا کارن بنی ہیں۔ ان کرانتیوں نے انتراشٹری استر پر بہت سی ویوستھاؤں میں بھاری پریورتن بھی کیے ہیں۔ واستو میں راجنیتک اور ساماجک گھٹناؤں کا گہرا اثر دیشوں میں بہت ہی اسپشٹ روپ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرانتیوں کا پربھاؤ کیول اس دیش تک سیمت نہیں رہتا جہاں پر وہ آتی ہے، بلکہ اس کی سیماؤں سے باہر بھی اس کو بہت ہی اسپشٹ روپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وشو میں کچھ کرانتیاں ایسی آئیں جو راشٹریہ ہتوں کی رکشا کے ادیش سے تانا شاہی ویوستھاؤں کے خلاف لمبے سمے تک سکریہ رہیں۔
پچھلی کچھ شتابدیوں کے دوران کچھ ایسی کرانتیاں بھی آئی جنہوں نے بڑے پیمانے پر ودیش میں اپنا پربھاؤ دکھایا۔ इन क्रांतियों में से एक 1789 की फ्रांस की क्रांति है, जिसे क्रांति की जननी भी कहा जाता है। इस क्रांति ने 17वीं शताब्दी में पश्चिम में लोकतंत्र और लिबरलिज्म में भूमिका प्रशस्त की। कहते हैं कि यह फ्रांसीसी क्रांति मानवता के लिए ह्यूमनिज्म को उपहार स्वरूप लाई। फ्रांसी क्रांति के बाद रूस के 1970 के इनकलाब ने भी विश्व के विभिन्न समाजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, जिसके परिणाम स्वरूप सोशलिज्म का पूरी दुनिया में फैलाव हुआ। रूसी क्रांति की एक विशेषता यह भी रही कि उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार को दो ध्रुवों में बांटकर शीत युद्ध की भूमिका प्रशस्त की। इस प्रकार से पूरा विश्व पूर्व और पश्चिम में बट गया था। इन क्रांतियों ने अपनी व्यापक आइडियोलॉजी के कारण न केवल अपने आंतरिक मामलों को प्रभावित किया, बल्कि बाहरी जगत को भी अपनी चपेट में ले लिया।
ईरान में आने वाली इस्लामी क्रांति को सफल हुए अब 43 वर्षों का समय हो चुका है। इस वास्तविकता को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ईरान की इस्लामी क्रांति अपनी धार्मिक पहचान के साथ न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में फैलती ही जा रही है। इसी बीच इस्लामी क्रांति की सफलता में स्वर्गीय इमाम खुमैनी की प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस धार्मिक नेता के विचारों ने ईरान के बाहर बहुत सी गैर धार्मिक शख्सियतों को प्रभावित किया है। वास्तव में विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों के वर्चस्व के मुकाबले में देशों में उठने वाली क्रांति की आवाज़ ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए बाहर का रुख किया और उन्होंने विदेशों में अपने समर्थक भी पैदा कर लिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति ने सफलता के साथ ही पूर्व विश्व के वंचितों के लिए स्वयं को आदर्श के रूप में स्थापित किया। ये बात कहना भी जरूरी है कि ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता और ईरान में इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन में स्वर्गीय इमाम खुमैनी की भूमिका की विदेशों में भी सराहना की गई। यही कारण है कि विदेशों में ईरान की इस्लामी क्रांति के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। वे लोग इस क्रांति को अपने लिए आदर्श के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष इस्लामी क्रांति की सफलता से संबंधित कार्यक्रम क्षेत्रीय देशों के साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी मनाए गए। ईरान में आयोजित इन कार्यक्रमों में बहुत से विदेशी अतिथि भी शामिल थे, जिन्होंने इस्लामी क्रांति की सराहना करते हुए ईरान की इस्लामी क्रांति की बहुत सी उपलब्धियों का उल्लेख किया।
बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि निसंदेह अगर हम ईरान की इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों की समीक्षा करना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से देश के भीतर अर्जित होने वाली उपलब्धियों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर भी नज़र डालनी होगी। ऐसे में हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते। ये वे उपलब्धियां हैं जिनमें से हर एक स्वयं से विशेष है। इस संदर्भ में इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि क्षेत्रीय देशों में अमरीकी छावनियों की मौजूदगी ने क्षेत्रीय सरकारों में उसके प्रभाव की भूमिका प्रशस्त की है।
शायद यही कारण है कि एक अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइज ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इराक, सीरिया, लेबनान, मिस्र, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय देशों में ईरान के प्रभाव के बारे में लिखा है। ईरान ने अपनी सॉफ्ट शक्ति के आधार पर सैनिक और आर्थिक शक्तियों की मौजूदगी के बावजूद 2008 के बाद से पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव अधिक बढ़ाया है। इस संदर्भ में निसंदेह क्षेत्रीय देशों की सरकारें और वहां के विचारक ईरान की इस्लामी क्रांति के प्रभाव को स्वीकारने लगे हैं। इस बारे में अल आलम टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अफगानिस्तान के लोगों ने तरह तरह की परेशानियों के बावजूद ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बारे में आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में अफगानिस्तान के पूर्व पलायन मंत्री आलमी बल्खी ने अपने संबोधन में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पिछले 43 वर्षों के दौरान अपनी वैज्ञानिक प्रगति को विश्व स्तर पर बनाए रखा है। उसने दर्शा दिया है कि ईरान की वैज्ञानिक प्रगति का कारण धर्म रहा है। उनका यह भी कहना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने विश्व के देशों विशेषकर अफगानिस्तान पर सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। इसी संदर्भ में अफगानिस्तान के एक छात्र अब्दुस्समी का ये कहना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति और स्वर्गीय इमाम खुमैनी की जीवन शैली अनुसरण के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श है। अफगानिस्तान के एक प्रोफेसर नूरुल्लाह कहते हैं कि इस्लामी समाज को इस समय ईरान की इस्लामी क्रांति जैसी एक क्रांति की ज़रूरत है, वो क्रांति जिसके नेता ने उसे प्रकाश का विस्फोट बताया था।
ईरान की इस्लामी क्रांति, उसकी सफलता और उसके प्रभाव के बारे में ईरान प्रेस को कई विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें उन्होंने इस बारे में अपने विचारों को रखा है। इस संबंध में काबुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नासिर वाएजी का कहना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की शासन व्यवस्था ने पिछले 4 दशकों के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन किए हैं। वे कहते हैं कि इन परिवर्तनों को इस्लामी देशों में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। विशेष बात यह है कि ईश्वर पर भरोसा करते हुए ईरानी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। काबुल यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर का कहना है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने विश्ववासियों के लिए इस बात को सिद्ध कर दिया है कि धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार गठन करने में सक्षम है।
काबुल के प्रोफेसर अब्दुल कादिर का मानना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने सबसे अधिक जिन देशों को प्रभावित किया है उनमें से एक अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की जनता ने स्वर्गीय इमाम खुमैनी और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनेई के मार्गदर्शनों का प्रतिरोध के मार्ग को अपनाया, जिस पर वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में तालिबान की अंतरिम सरकार के एक सदस्य सैयद हाशिम जवादी बल्खी का कहना है कि अफगानिस्तान की जनता को इस्लामी क्रांति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है।
वे कहते हैं कि जब ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई थी तो उस दौरान अफगानिस्तान में मार्क्सवाद का विद्रोह हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने ईरान की इस्लामी क्रांति के आध्यात्म से प्रभावित होकर पूर्व सोवियत संघ का मुकाबला किया था। ईरान की इस्लामी व्यवस्था ने विश्व में विकास का नया आदर्श पेश किया। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने पूर्व सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नाम अपने पत्र में लिखा था कि गंभीर रूप से हम आपको इस्लाम को समझने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह इस कारण नहीं कि इस्लाम और मुसलमानों को आपकी आवश्यकता है, बल्कि यह इसलिए कि विश्वव्यापी इस्लामी मूल्य विश्व के समस्त राष्ट्रों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी ही वे नेता थे जिन्होंने धार्मिक प्रजातंत्र या इस्लामी लोकतंत्र का विचार पेश किया था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी का मानना था कि लोकतंत्र तो इस्लाम के स्वभाव में निहित है। इस्लाम प्रजातंत्र का समर्थक है। इस धर्म में जनता की राय को अहमियत एक दिखावा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसकी जड़ इस्लामी सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। इमाम खुमैनी की नज़र में इस्लाम में प्रजातंत्र और धार्मिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था संयोगवश घटना नहीं है जिसे पश्चिम से लिया गया हो और उसे ज़बरदस्ती आपस में समन्वित कर दिया गया हो, बल्कि प्रजातंत्र और धर्म एक दूसरे से अभिन्न अंग है।
ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बारे में अफगानिस्तान, आजरबैजान, तुर्की और केंद्रीय एशिया के देशों के बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे। विशेष बात यह है कि यह सारे विचारक इस बात पर एकमत हैं कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने क्षेत्र पर सकारात्मक व सार्थक प्रभाव डाले हैं। इसी बीच बहुत से पश्चिमी चिंतक भी ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हीं में से एक स्टीफन शेर्म का मानना है कि ईरान का क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव है। मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान की क्षमता और उसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। एक पश्चिमी विचारक माइकल स्कोई के अनुसार इराक युद्ध में इस युद्ध के बाद सद्दाम के पतन के पश्चात पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया और दक्षिणी लेबनान में ईरान का प्रभाव बहुत ही तेजी से बढ़ता गया। इस प्रकार से पश्चिमी एशिया में ईरान की शक्ति लगातार बढ़ रही है।
इन सभी पश्चिमी विचारकों का ये मानना है कि इस्लामी क्रांति की छत्र छाया में ईरान इस समय क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। वो अब क्षेत्र को प्रभावित करने वाले देश के रूप में बदल चुका है। ईरान अपने बलबूते पश्चिम की वर्चस्ववादी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका को क्षेत्र में कमज़ोर बनाने में भी सफल रहा है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और लेबनान में ईरान का प्रभाव इसी बात की पुष्टि करता है। ये बातें बताती हैं कि एक समय तक दूसरों पर निर्भर देश अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। कतर में मौजूद ईरानी राजदूत ने बताया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अगले सप्ताह कतर जा रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने कहा है कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि रूस और चीन की अपेक्षा ईरान बड़ी चुनौती है। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे थे। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलें, पता है pasttoday.com/hi। तो श्रोताओ, इसी के साथ अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.